मोबाइल वाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को अबू ठाकुर का नमस्कार। अभी आम बजट की चर्चा में हमारे साथ हैं शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल कुमार भूषण जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार का बजट कैसा है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अबू जी। मैं मोबाइल वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका और उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यह जो आम बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया, यह वास्तव में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षा थी जिसमें कि गरीबों किसानों के लिए कुछ काम किया जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम कर गुजरने की जो उनकी तमन्ना थी उसकी रूपरेखा तो उन्होंने तैयार किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम करने का प्रयास इस बजट में जरूर किया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी आना बाकी है और उसके लिए कोई बहुत खास बजट में बढ़ोतरी भी नहीं किया जा सका है। हाँ, रक्षा के क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई है और खास करके आयकर में तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का बढ़ना, खास करके कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए लगभग 137% बजट को बढ़ाया गया है, यह एक अच्छा चीज है। पेपरलेस बजट भारतीय इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है, यह भी एक नया चीज है। लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत में कृषि मंडियों के बारे में, भारतीय किसानों के बारे में जो चिंताएं हैं देश के किसानों की, उसके मद्देनजर मजबूत करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसान को संतुष्ट न कर पाए। किसान अब भी चिंतित हैं और किसानों की आय कैसे दोगुनी ये करेंगे, कहने को तो कह देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते हैं और किसान की हालत वास्तव में अभी दयनीय है। पूरे देश में किसान को उसका लागत मूल्य भी न मिल पाता है और अगर पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को और उनकी जमीन को गिरवी रख दिया जाएगा तो फिर तो किसान बदहाल हो जाएंगे और फिर इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे और पीछे चली जाएगी। वैसे भी जीडीपी इतना ज्यादा गिर गया है तो उसके सुधार के लिए इस बजट में कोई खास रोड मैप नहीं दिखा जिससे पता चलता कि वह जो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग अभी मैं महसूस करता हूं कि बहुत नीचे, ये लगभग 3 साल के देश का जो जीडीपी है वह बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं किया गया इस बजट में। और वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो योजनाबद्ध तरीका पेश करना चाहिए जिसमें कि देश के गरीब हो, देश के किसान हो, मेहनतकश मजदूर हो, और इन लोगों के लिए सिर्फ लुभावने वादों से या उसका दावा करने से जनता के मन में आशा का संचार नहीं होगा। सरकार जो वायदे कर रही है उसको जमीनी हकीकत में बदलना पड़ेगा, तभी यह जो बजट पेश किया गया है COVID-19 के इस महामारी के काल में, तो केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है और उसमें जो 35,000 करोड़ की जो घोषणा की गई है तो वह तभी सफलीभूत होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति है, तो इसका मकसद तो तभी लक्षित होगा जब मध्य वर्ग को भी कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मध्य वर्ग इस देश की रीढ़ है और मध्य वर्ग के साथ बहुत कठिनाई है और उसके लिए महंगाई बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और यही सब कारण से ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है और समावेशी विकास के युग की जो शुरुआत करने की बात ये लोग करते हैं, तो ऐसा तो तभी दिखेगा जब अपने वादे को ये पूरा करना शुरू करेंगे। वादे करने से क्या होता है, बजट तो बनाते हैं लेकिन वह पिछड़ जाता है और उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता है, यह चिंता का विषय है। फिर भी इन्होंने जो प्रयास किया है इस कोरोना काल में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसी संदर्भ में भारत की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो अगर किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए, मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया जाए, निम्न आय वाले लोगों पर ध्यान दिया जाए, मध्य वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया जाए, तो मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं कि ये जो बजट का प्रारूप लेकर के आए हैं, अगर उसको अमली जामा सही तरीके से पहनाया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बार के शिक्षा के बजट में 6,000 करोड़ की कटौती की गई, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
इसका बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि बजट में शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, पूरे देश में निजीकरण का बाढ़ लाया जा रहा है, और खास करके केंद्र सरकार यह नहीं समझ रही है कि निजीकरण होने से देश के आम आदमी को लाभ नहीं होगा। पूंजीपति के हाथ में अगर देश चला जाए तो पूंजीपति इस देश को नहीं चला पाएंगे, जिस देश को कि 135 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार न चला पाती हो, उसको कुछ पूंजीपति इसी देश के लोगों से मिलकर के कैसे चला लेंगे? और सिर्फ मशीनीकरण की बात करने से, सिर्फ हवा हवाई बात करने से, या पूंजीपतियों को बूस्टअप करने से आम आदमी के बीच आक्रोश बढ़ेगा, और आम आदमी जिस प्रकार भी भारतीय किसान नाराज चल रहे हैं, फिर कल आम आदमी, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग के लोग, आम आदमी परेशान होंगे, तो सरकार की किरकिरी होगी। और शिक्षा जगत में अगर बजट आप कम कर देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को पढ़ने लिखने का साधन नहीं मिलेगा, और पूंजीपतियों के हाथ में, निजी वर्ग के हाथ में सब कुछ अगर देश का चला जाएगा तो वो अपने सिर्फ फायदे के लिए काम करेंगे। पूंजीपति लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खास करके मोबाइल और कंप्यूटर का जो दाम बढ़ने की बात चल रही है, ऐसे में जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, जो कि आज के डेट में डिजिटल तरह की शिक्षा हो गई है, लोग मोबाइल और लैपटॉप पर निर्भर करने लगे हैं छात्र छात्राएं, ऐसे स्थिति में जो मोबाइल और लैपटॉप का जो दाम बढ़ने की बात हुई है, इसका स्टूडेंट की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा?
स्टूडेंट, ये ऊंचे वर्ग के लोग जो होंगे उनके ऊपर बजट में इन सभी चीजों का दाम बढ़ने से उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, वो उनकी संख्या बहुत कम है, वो 5-10% लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आम आदमी जो है, जो 80% लोग जो हैं, 60% जो लोग हैं, उनके हाथ से शिक्षा निकल जाएगी, उनके पास शिक्षा का कोई आधार नहीं बचेगा। और ये जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये जो विश्व स्तरीय लेवल की बात करते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि स्टैंडर्ड हमारा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आधारभूत संरचना भी तो होनी चाहिए, उसके लिए लोगों के पास टैबलेट होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, लोगों के पास उच्च कोटि का लैपटॉप होना चाहिए, और फिर अन्य साधन भी होने चाहिए, सैटेलाइट वैसा हो जो कि हमारे सिग्नल को सही ढंग से भेज सके गांव के दूर दराज लोगों के बीच में। यह जो बजट होना चाहिए, खास करके शिक्षा में जो कटौती कर दी गई, तो निजी क्षेत्र में इससे निजीकरण का बाढ़ आ जाएगा, निजी लोग विश्वविद्यालय चलाने लगेंगे, डिग्री पैसों से खरीदी जाने लगेगी, और शिक्षा का स्तर मैं समझता हूं गिर जाएगा, और आम आदमी के बीच से जो तपे तपाए शिक्षित लोग निकलते थे वो निकलना बंद हो जाएंगे, और अंततः देश की शिक्षा व्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। इसलिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में तो निश्चित रूप से बजट बढ़ाया जाना चाहिए था, इसलिए कि उससे हम रिसर्च कर पाते, उससे हम नई नई खोज कर पाते, नए नए इन्वेंशन कर पाते, और हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, हम उसमें विकास कर पाते। और उसमें कटौती किया जाना या इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम बढ़ा दिया जाना, यह काफी चिंता का विषय है, और इससे आम आदमी का भला नहीं हो पाएगा।
दलहन और तेलहन के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में जो गरीबों के थाली में दाल परोसी जाती थी, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, जो चरितार्थ था वो कहीं कहीं धक्का पहुंचेगा, इस पर आप क्या कहेंगे?
दलहन और तिलहन के दाम सरकार बढ़ा रही है, सरकार अपना तर्क देगी कि हम जो है एमएसपी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम किसानों को उसके वाजिब दाम देने के लिए हमको इसका दाम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई यह है कि जब किसान का उत्पाद बाजार में आता है, उसके प्रोडक्ट्स जब बाजार में आते हैं तब सस्ता हो जाता है, और फिर जब वह स्टोर्ड हो जाएगा, जब उनके हाथ में, पूंजीपति वर्ग के लोगों के हाथ में, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में ये सब कुछ चला जाएगा, तो फिर वो अपने मनमानी के तरह, ये जो तीन कानून अभी हैं उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसके मुताबिक फिर वो दाम बढ़ा देते हैं, और फिर आम जनता से वसूली करने लगते हैं, किसान को इसका फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसान तो औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनको फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए एमएसपी को तय करना और उससे कम रेट पर नहीं बेचने की बात कर रहा हूं, ये अच्छी बात है। किसान का मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए कि जो उसका लागत मूल्य है उसमें 50% आप जोड़ करके दें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि इसको मैंडेटरी होना चाहिए कि इसको अनिवार्य रूप से लागू करें। इससे कम पर लागू अगर हो तो उसको सिविल कोर्ट में भी, उसको न्यायालय में दिया जाना चाहिए, उसको एक्सिक्यूटिव में नहीं दिया जाना चाहिए, उसको न्यायालय में देना चाहिए कि अगर वैसे कोई गलती करते हैं तो उनके ऊपर उसको पनिशेबल होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो अच्छी बातें हैं। और दलहन और तिलहन का दाम कब बढ़ता है? जब पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है स्टॉक, जब उनके पास आ जाएगा तब वो बढ़ाते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आलू जिस समय किसान लगा रहे थे उस समय 4200 रुपये से लेकर के 4600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से वो खरीद रहे थे बीज, और आज जो है जब उनका प्रोडक्ट आया तो 700 रुपये क्विंटल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई 6 गुना अगर उनका बीज में गिर गया तो फिर खाद है, कीटनाशक है, उनका मेहनत है और सिंचाई का प्रबंध है, तो इन सभी चीजों के देखने के बाद किसान की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। किसानों को फायदा नहीं होगा, या फायदा होगा जो स्टॉक करेंगे, या फायदा होगा पूंजीपतियों को, या फायदा होगा कारपोरेट सेक्टर के लोगों को। इसलिए दाम बढ़ा देने से उनको फायदा होगा, किसान को या फायदा नहीं होगा, और आम आदमी महंगाई की मार झेलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।